ओम शांति। आदरणीय रामनाथ भाई का हम सब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी को बहुत सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाएंगे और भाग्य का खाता जमा कैसे हो इस विषय पर क्लास भी कराएंगे। आदरणीय रामनाथ भाई करीब 40 वर्षों से बाबा के इस बेहद यज्ञ में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और ज्ञान योग की भट्टियां करने कराने देश विदेश में आप जाते हैं। वहां अनेक आत्माओं को आपने बाबा का बच्चा बनाया, ब्राह्मणों की पुरुषार्थ की उन्नति की और आप धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक हैं और धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत और आप अनेक स्थानों पर जाकर शंकराचार्य महामंडलेश्वरों की आदि सबकी सेवा करते हैं और बाबा का परिचय देते हैं। आदरणीय रामनाथ भाई।
ओम शांति। सभी को शिव जयंती की मुबारक हो, क्योंकि शाम को शिव बाबा आएगा बच्चों का दर्शन करने के लिए। तो बाबा आता है किसके लिए? बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कल बताई थी। अगर कल की आप अव्यक्त मुरली देखेंगे तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई, बच्चे बाप आता है बच्चों का भाग्य बनाने के लिए। कितने जन्म के लिए? गारंटी देता है 21 जन्म के लिए, लेकिन सारे कल्प के लिए आप अपने तकदीर भाग्य बना सकते हो। गारंटी है 21 जन्मों के लिए, लेकिन सारे कल्प के लिए आप अपना भाग्य तकदीर बना सकते हो। लेकिन कैसे बनाएंगे? अपने आप तो नहीं बनेगा। भगवान को कहते हैं भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि देता है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे सहज विधि देखो, दुनिया में भी एक यूनिवर्सल लॉ है, विश्व के अंदर एक नियम है। खेती में अगर आप एक बीज बोलो 50-100 दाना लगते हैं, उसमें भी गेहूं का बीज बोलो तो गेहूं ही उगेगा। ऐसे नहीं भोलानाथ भगवान जो चाहे करेगा, गेहूं बोलो तो चावल उगेगा, ऐसा नहीं। जो बोएंगे व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएंगे वो मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को वर्षा देने आता है। कौन सा वर्षा हो? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, कि सारे कल्प के लिए गारंटी देता है 21 जन्म के लिए कि इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी, हर प्रकार से धन संपत्तियों से जीवन संपन्न रहेगा, मन सदा हर्षित निर्मल रहेगा। कैसे रहेगा वो? अगर कोई बीमारी है बाबा ऊपर से दवाई देगा तो कैसे होगा? तो बहुत विधि चाहिए। कभी कभी हमारे मन में आता है कि बाबा को याद करो सब हो जाएगा, नहीं। मनुष्य को जीवन में चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। सिर्फ रोटी नहीं खाएंगे, सिर्फ चावल नहीं खाएंगे, तो हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। तो कलयुग और स्वर्ग इसी को कहते हैं। कलयुग में देखो किसी को सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसी के पास देखो खाने के लिए इतना धन है खाने वाले कोई भी नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, इन तीनों में इम्बैलेंस है। तो ये बैलेंस कौन करेगा, कैसे होगा ये? तो उसकी विधि बाबा बताता है कि बच्चे अगर शरीर को सारे कल्प के लिए कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए तो उसकी विधि है। तो शुभ बाबा के इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचते हैं, इस यज्ञ की आप सेवा करो। कितनी करना चाहिए? कि बाबा ने कहा संगम पर एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है। अगर एक सेकंड आप इस यज्ञ की सेवा करो, एक जन्म के लिए निरोगी काया मिलेगा, एक का पदम गुना विधान है। तो शिव बाबा के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ विधि बताता है, इसलिए उसको कहते हैं भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। उस दिन भी बताया था कि बच्चे अपने आप मन शांत नहीं होगा, अपने आप शक्ति नहीं मिलेंगी, विधि चाहिए। हम समझते सिर्फ बाबा को याद करो, इसलिए याद, योग और तपस्या तीन चीजें अलग अलग है। तो आज भी हेल्थ कैसे मिलेगा, तो इस यज्ञ की सेवा करो। शास्त्रों में भी कहा, दधीजी ऋषि ने यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा किया। अगर यज्ञ में हड्डी डालो तो भ्रष्ट हो जाएगा ना, अर्थात ये तन, इसी तन के द्वारा इस यज्ञ की सेवा किया। तो आज बाबा भी वही, जो गायन है आज भी बाबा वही कहता है, बच्चे ये तन आपका नहीं, आप एक सेकंड भी इस शरीर में नहीं रह सकते हो। अगर टिकट आया आप कह सकते हो एक मिनट के बाद आता हूं, चलेगा नहीं। टिकट आया, कितना भी सोना पहना हो, कितना भी आपने खाना खिलाया, कितना भी इससे प्यार है, तो छोड़ देना ही पड़ेगा कि अपना नहीं, भगवान की अमानत है ये। तब बाबा ने कहा, बच्चे इस तन से इस रुद्र यज्ञ की सेवा करो, ये यज्ञ आपको वरदान देगा, निरोगी काया वरदान देगा। तो कितनी सेवा करना चाहिए, एक घंटा, दो घंटा, कितने जन्मों के लिए, तब का भाग्य हमारे हाथ में है। कितने जन्मों के लिए निरोगी काया चाहिए, अगर एक सेकंड इस यज्ञ की सेवा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, कैसे करो, अब उसकी भी विधि है कैसे करना चाहिए। पहले कहा तन से यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करो, ये तन आपको निरोगी काया देगा। दूसरा आया, धन कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। बाबा मुरली में बहुत दफा कहता है, बच्चे श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। तो श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है, दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, तो श्रीमत में मन मत कैसे मिक्स होता है, देख लो। साधारण एक बात बताता हूं, कभी कभी ये बातें समझ में नहीं आता है क्योंकि रूहानी भाषा है, ज्ञान इतना सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता है। तो बात देख लो, साधारण बाबा मुरली में कहता है, बच्चे तन से सेवा करो। अभी भाई जी बैठे हैं, भाई जी मुरली सुनते सुनते सोचते हैं, बाबा आज तन की सेवा नहीं कर सकते हैं, नौकरी में जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मन से सेवा करो। बाबा जहां तन लगेगा वहां मन भी तो वहां लगेगा ना। फिर बाबा ने कहा, बच्चे धन की सेवा करो। तो भाई जी के मन में आया, हाँ सेवा कर सकते हैं। जेब में देखा 100 रुपए का नोट है, क्या करूं, चारों तरफ देखा, सेंटर में थोड़े माताएं भाई जमीन पर बैठे, थोड़ी सी कुर्सी है चेयर से, तो देखा एक 100 रुपया में एक चेयर आ सकती है। सीधा उठ करके मार्केट में गया, एक चेयर लाके सेंटर में रख दिया। तो धन की सेवा क्या चलेगा, तन से तो नहीं किया, मन से नहीं कर सकते हो, धन से तो कर सकते हैं ना। बाबा ने कहा तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ। तो आपके ताकत कैपेसिटी 100 रुपया है, देखा जेब में, तो क्या सेवा करो, चारों तरफ देखा कि थोड़े लोग जमीन पर बैठे हैं, तो सीधा उठ करके मार्केट में गया, एक चेयर लाके रख दिया। तो धन की सेवा हो गया, चलेगा बताओ, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों क्यों नहीं चलेगा बहने बताओ, तन से नहीं किया, मन से नहीं किया, धन से किया, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा बहन जी कहती, चलेगा नहीं चलेगा, हाँ बताओ जल्दी भाई बताओ, हाँ चलेगा ना, निर्मला बहन बताओ चलेगा ना, हाँ तन से नहीं किया, मन से नहीं किया, धन से तो किया, किरण बहन बताओ नहीं चलेगा, तो क्या करना चाहिए, हाँ लेकिन ये भी तो उसके मन में आया ना कि सेंटर में कुर्सी नहीं है, एक चेयर लेके आओ। हाँ यहाँ कभी कभी आता है कि बाबा ने मुरली में कहा, श्रीमत बाबा का है, मुरली बाबा की है, श्रीमत सुनने के बाद भी यहाँ के जो सेंटर को या शांतिवन यहाँ बैठे हो, यहाँ के जो व्यवस्था करने वाले निमित्त आत्मा है, उनको पूछ करके अगर आप सेवा करते हो, एक का पदम गुना जमा होता है। आपने कहा, बाबा ने कहा, आप कहेंगे बाबा ने कहा, बाबा की मुरली बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर जा करके आप खुर्ची ला के रखते हो तो बहन जी कहेंगे अरे बहुत खुर्चिया है, रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए नहीं रखा है। तो आपका एक का एक गुना जमा होता है। तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, बाबा का श्रीमत है तो श्रीमत भी समय, परिस्थिति, व्यक्ति, इन तीनों को देखकर उपयोग करना चाहिए। तो यहां इस स्थान पर अगर आप श्रीमत का उपयोग करते हो, यहां के निमित्त आत्मा को पूछ के करना चाहिए, नहीं तो उसको कहते मन मत का। श्रीमत के अंदर श्रीमत है, उसके अंदर आपने मन मत मिक्स किया। अगर आप बहन जी को पूछते हो, बहन जी बाबा ने आज मुरली में कहा तन लगाओ, तन से सेवा नहीं कर सकते है, मन से नहीं कर सकते है, धन से करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे मन में विचार आया बहन जी एक मैं चेयर लेके आओ। अरे बहुत चेयर है, आप ये पैसे भंडारे में डालो और कोई सेवा में काम में आएगा। तो एक का पदम गुना जमा होता है, क्योंकि बहुत दफा मन के अंदर ज्ञान हमने सुना श्रीमत और मनमत, ये समझ में नहीं आता है कि तन कहां लगाना चाहिए, धन कहां लगाना चाहिए। धन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, समय को देखते हुए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि तन कहां लगाना चाहिए। तन के लिए भी बताओ आपको, देखो एक परिवार था कि माताजी गीता पाठशाला चलाती थी, कई माताएं बहुत है इसलिए अनुभव सुनाओ कि माताजी गीता पाठशाला चलाती थी, रोज हर साल मधुबन में आती है और कहते भाई जी हमारा पति नारायण तो ज्ञान में नहीं चलता है। हमने कहा आप नारायण की चिंता क्यों कर रहे हो, लक्ष्मी कमाती नारायण खाएगा। लेकिन पता चला कि नारायण रोज पति रोज बहन जी को सेंटर में छोड़ने भी आता, लेने भी आता था, लेकिन क्यों नहीं सुनता था ज्ञान, कि माताजी ज्ञान सुनती है, घर में जाके बच्चों को गुस्सा भी करती है, मारती भी है, तो पति कहेगा इनका ज्ञान सुनने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं जाएगा तो क्या होगा, दूर से नमस्ते। क्योंकि माताएं कहते हैं कि परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, पति ज्ञान में नहीं चलता है, बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, कारण ये ज्ञान के बिगैर गति सदगति नहीं हो सकती है। परिवार वालों को भी ज्ञान सुनाने का तरीका चाहिए। फिर पता चला एक साल के बाद माताजी ने शरीर छोड़ा, एक साल के बाद पति ने देखो घर बहुत दूर था और दो लड़कियां थी, उस घर को बेचकर दोनों लड़कियों को सेंटर में समर्पित कराया और सेंटर के सामने मकान लेके आज भी 24 घंटा सेवा करता है। तो लक्ष्मी आगे गई थी, नारायण आगे गया। सोच लो कि तन भी कहां लगाना चाहिए, मन का धन कहां लगाना चाहिए। अभी तीसरी बात आई मन की, मन कहां लगाना चाहिए। बाबा ने बहुत दफा कहा मन जीत जगत जीत। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, मुरली सुनते हैं याद ही नहीं रहता, सवेरे सुना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहां से बाहर गए, घर में गए, संसार में गए, किसी को गुस्सा किया, किसी को कुछ बोला तो चलेगा, कोई मानेंगे ज्ञानी तो बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कहेंगे। हाँ आप पूछेंगे हमको भी याद नहीं रहता है, ज्ञान सुनने की भी विधि है। अगर आज आपने ज्ञान सुना 50 साल तक भी आप याद रख सकते हो, ऐसे टेप रिकॉर्डर हमारे पास है, सिर्फ उसको यूज करना जानना चाहिए। उसमें से तीन विधियां हम कर सकते हैं साधारण। देखो जब भी आप सवेरे मुरली सुनते हो, सारी मुरली किसी को याद नहीं रहता है, एक मुरली के पॉइंट ले लो, एक मुरली के पॉइंट भाई लिख करके अपने जेब में रख दो, माताएं डायरी में लिख करके किचन में रख दो, यहां से घर गए, घर जाने के बाद हरेक को भगवान ने दो हाथ दिया है, एक हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में डालो, बाबा ने क्या कहा था आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मन के लिए भोजन है, शुद्ध विचार। बाबा कहता है बाबा के याद में खाना खा लो, तो याद क्या है, आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, याद में रहता है, जेब में लिखा हुआ है निकाल के पढ़ाओ, माताएं डायरी में लिख के रखा है पढ़ो, खाना खाने बैठो तो। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, तन को स्वस्थ बनाने के लिए कितनी दफा खिलाते हो, तीन दफा खिलाते हो, आत्मा को कितनी दफा खिलाते हो? तो शक्तिशाली तन के अंदर कमजोर आत्मा है, तो बैलेंस नहीं है। तो दोनों का संतुलन चाहिए। शरीर को तीन दफा खिलाते हो तो आत्मा को भी तीन दफा खिलाओ। कैसे खिलाएंगे? एक मुरली के पॉइंट, बस एक ही। भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं। एक जो जेब में रखा, नाश्ता आया, ये हाथ गया, ये हाथ जेब से निकालो, पढ़ो। दिन में खाना आते ही ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ पढ़ो, अपने आप को पढ़ाओ। रात को अगर तीन दफा आप एक मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाते हो, सिर्फ एक हफ्ता करके देख लो, ये दवा है। गुस्से को मिटाने की भी दवा है। गुस्सा भी क्यों आ रहा है? बेहोशी में आता है। गुस्सा होने के बाद भी याद आता, अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो बेहोश वालों को होश में कैसे लाए? तो दुनिया में संजीवनी बूटी सुंगाते हैं, तो बाबा के बच्चों के लिए मुरली ये संजीवनी बूटी है, ये जेब में रखो। अगर कम से कम तीन दफा अपने आप को सुंगाते हो तो देखना, एक हफ्ते के अंदर ही अपने आप क्रोध आपको छोड़ के जलेगा। सिर दर्द होता है आपको, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द जाओ, सिर दर्द नहीं जाता है, दवाई लेनी पड़ती है। शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, भौतिक दवाई लेनी पड़ती है। ये आत्मा के अंदर बीमारी है, संस्कार है, उसको अगर मिटाना चाहते हो तो ये संजीवनी बूटी है। सवेरे एक दफा, एक ही पॉइंट, दो भी नहीं चाहिए, सवेरे एक दफा, दिन में एक दफा, रात को एक दफा, एक मुरली के पॉइंट तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ। ये नंबर वन तरीका है। दूसरा, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में तीव्र गति से करो, और तीव्र गति में जाओ। सारे दिन में आज की दुनिया में कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाँ, किसी का फोन आता है, कोई दुनिया के समाचार सुनाता है, इधर उधर की बात सुनाता है कि हम संसार ग्रस्त में है, सन्यासी नहीं। किसी का दर्द दुख सुनना पड़ता है। हाँ सुन लो, उन्होंने कोई संसार का समाचार सुनाया, आपके जेब में आपके पास मुरली का पॉइंट है, मुरली के पॉइंट पढ़ के बताओ, आप शुभ समाचार दे दो। अगर सारे दिन में कम पांच छह लोगों को आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो, बाबा ने कहा ये ज्ञान धन है। किसी को एक लाख रुपया दिया, खाया पिया खत्म, ये ज्ञान धन अविनाशी है, इसकी प्राप्ति भी अविनाशी है। तब का एक जन्म के लिए अगर आपको धनवान बनना चाहते हो, एक व्यक्ति को आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ, ज्ञान धन के अविनाशी संस्कार बनाओ। सिर्फ हमने पढ़ लिया, सुन लिया, फायदा नहीं, दान करो। कैसे कहां करने जाएंगे? हाँ सवेरे किसी ने फोन किया, नहीं किया किसी ने, पचास रुपया इसके लिए खर्चा करो एक महीने में। सवेरे पति को फोन करो, दिन में और किसको करो, शाम को और किसको करो। दिन में अगर तीन दफा आपके मुख से ये ज्ञान रतन निकलते हैं तो ये कमाई जमा कर रहे हो। तो धन दान करना सीखो। तो ज्ञान दान, कितना दान करें, किसी को खाना कितने दिन खिलाएंगे आप, पैसे कितना दिन देंगे, ये अविनाशी ज्ञान धन है। तो दूसरा तरीका। तीसरा और एक है माताओं के लिए खास। माताएं कहते हैं परिवार वाले ज्ञान नहीं सुनते हैं, कभी भी ज्ञान मुख से सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञान के बिगैर उनकी भी गति नहीं है। अगर गति सदगति देना चाहते हो तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे? सबसे सहज तरीका है, देखो, माता बच्चों को, पति को सवेरे, दिन में, शाम को तीन दफा हाथ से खाना खिलाते हो। जब खाना खिला रहे हो, मन क्या कर रहा है? खाली है, और कुछ चिंतन करता है? मन का आवाज मन को पहुंचता है। तो खाना खिलाते समय मन में आप याद करो, बाबा आपने मुझे कहा आज गुस्सा नहीं करो, ये भी तो आपका बेटा है, इनको भी आप समझाओ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। मन में मुरली के पॉइंट याद करो, ये मन का संकल्प मन को पहुंचता है। एक साथ दोनों काम कर सकते हो। आज बाबा ने कहा शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा सेवा करो, तो शक्तिशाली वृत्ति क्या है? संकल्प। खाना हाथ से खिलाओ, बच्चों को खिलाते हो, पति को खिलाते हो, मुख से कभी भी परिवार वालों को ज्ञान नहीं सुनाना, वो तुरंत कहेंगे आप परिवर्तन पहले करो। तो नहीं सुना है परिवार की सेवा जरूर करनी चाहिए कि अकेले आप सत्युग में नहीं जाएंगे। और बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है, अगर एक माता परिवार के अंदर थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए, पति बच्चे सारा परिवार सबका ग्रस्त आश्रम संगम पर, वही भविष्य में ग्रस्त स्वर्ग हो जाएगा। तब बाबा कहते हैं संस्कार यहां से डालो, संस्कार रूपी बीज यहां बोलो। इसलिए भारत माता की जय कहते हैं। अगर एक जितनी माता यहां बैठे एक ही संकल्प लेवे, रोज एक मुरली के पॉइंट याद रखना है, लिख नहीं सकते हो, किसी को पूछ लो, मुरली सेंटर से लेके हो, बच्चे पोते घर में कोई है उनको बोलो पढ़ के सुनाओ, नहीं है फोन करके पूछ लो, एक मुरली के पॉइंट अपने आप को भी पढ़ाओ, परिवार वाले बच्चे नहीं मां सुनते हैं, पति नहीं सुनता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, गुस्सा करता है, हाँ खराब है, बीमार है, बीमार व्यक्ति को दवा देंगे ना, अपने आप ठीक तो नहीं होंगे, तो दवा कौन सी है, ये मुरली के पॉइंट। रोज बाबा आके नए नए पॉइंट देता है, खाना खिला रहे हो, नाश्ता खिला रहे हो, तीन दफा शरीर को सेवा करते हो, वो करना है, ग्रस्त धर्म निभाना है। तो ग्रस्त धर्म के साथ आध्यात्मिक ज्ञान कैसे सुनाए, मन में संकल्प करो, बाबा आपने मुझे ये सुनाया, तो आपके मन में संकल्प आया, मुरली के पॉइंट याद आया, मन मन की सेवा करता है। ये सेवा करके देखो परिवार की सेवा कैसी करनी चाहिए, परिवार को परिवर्तन कैसे करना चाहिए, तो सारा परिवार अपने आप शांत स्वच्छ हो जाएगा। तब बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे मन जीत जगत जीत है, मन को जीत लो, नहीं तो बच्चों को खाना खिला रहे हो, पति को खाना खिलाओ, मन में पहले संसार के विचार आता है, ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर उधर के विचार आता है, तो मन में खाना खिलाते समय आप भी बाबा को याद करो, उनको भी बाबा की याद अपने आप याद आएंगी। तो ये बहुत शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा सेवा करो। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों कैसे प्राप्त होगा, तीनों की विधि चाहिए, तन से भी सेवा चाहिए। आप कहोगे बाबा को याद किया निरोगी काया हो जाएंगे, धन अपने आप मिलेगा, नहीं, तीनों विधि चाहिए। तो बाप आकर के बच्चों को वर्षा देता है, वर्षा देने की विधि बताता है, बच्चे मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, सुन लिया आपने, यहाँ से बाहर जाते ही देख लो पता ही नहीं क्या सुना, सुनने की भी विधि है, खेती में बीज बोने की भी विधि है, ऐसे बीज बोलो चिड़िया खा के जाएंगे, बीज बोने की विधि है, हर कर्म की विधि अलौकिक है, और वो संगम पर ही शिव बाबा आके सुनाता है। अगर इस विधि पूर्वक सेवा करते हो तब देना, बाबा ने कहा बच्चे 21 जन्म के लिए कम से कम सारा कल्प के लिए आप अपना भाग्य बना सकते हो, बहुत कुछ पढ़ने से बहुत कुछ खाने से मोटा नहीं बनता है, थोड़ा सा खा लो लेकिन डाइजेस्ट करो, हजम करो, रोज एक ही मुरली के पॉइंट ले लो, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट हमारे आचरण में आएंगे। नहीं तो हमने तीन दफा मुरली पढ़ी सारी, सवेरे भी पढ़ा दिन में भी पढ़ा लेकिन याद कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए देख लो आप हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। अभी भी सुनने में आता है सभी, एक भी व्यक्ति उस दिन क्लास में उठाया था, एक भी व्यक्ति नहीं है अभी भी क्रोध मुक्त हो। अगर क्रोध कोई नहीं जीता और पांच विकार चार विकार है, तो क्रोध का अंश अगर रह जाए तो सत्यु का टिकट मिलेगा, तो उसकी विधि चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से याद रखो, ज्ञान बहुत कुछ है, बाबा ने बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन ज्ञान को आचरण में लाने की विधि चाहिए। क्यों? कि ये रूहानी ज्ञान है, सिर्फ सुनने से भक्ति मार्ग था तब कहते हैं सत्संग से सदगति होती है, लेकिन सत्संग भी किसको कहेंगे, जिसके सदगति हो, दुर्गति माना पाप, पाप किससे मिटेगा? जहां कम से कम तीन प्रकार की सत्यता अगर है उसका नाम है सत्संग। एक, कहीं भी जाओ आप, किसी भी सत्संग में जाओ, अगर वहां कहते हैं कि आत्मा समझ के बैठो, आत्मा सत्य है, शरीर की सदगति करने नहीं जाते हम, आत्मा की, अगर आत्मा समझ के अगर वहां बैठते हो उसका नाम है सत्संग। दूसरा, वहां बैठकर किसका ध्यान लगाते हो आप? एक, परमपिता परमात्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसने कहा मैं पाप कटेश्वर हूं, पतित आत्मा को पावन करता हूं, शरीर को काले का गोरा करता नहीं कहा, शरीर की बीमारी ठीक नहीं करता है कहा, वो डॉक्टर करेगा, इस रूहानी सर्जन आत्मा की बीमारी मिटाता है। अगर वहां बैठकर आत्मा समझकर एक निराकार को याद करते हो उसका नाम है सत्संग, से सदगति होंगी। उस सत्संग में बैठकर किसका ज्ञान सुनते हो? एक निराकार भगवान, निराकार है वो, साकार माध्यम के द्वारा आकर अपने निराकार आत्माओं को ज्ञान सुनाता है, शरीर को नहीं। तब बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी होके बैठेंगे, एक एक मुरली के पॉइंट अपने आप प्रिंट होता है। अगर थोड़ा सा शरीर का भान है, देखो मुरली सुन रहे या समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी भाषा है कि आत्मा के लिए है। तब बाबा के सेंटरों में, मधुबन में, सब जगह पर देखो, कोई भी कार्य करने से पहले पहले एक गीत बजता है, नहीं तो 5 मिनट योग में बैठो, क्योंकि हम शरीर लेके आते हैं, जैसे चप्पल बाहर छोड़ दिया, चप्पल पहन के तो नहीं बैठते, तो यहां अंदर तक शरीर लेके आते हैं, यहां बैठने के बाद शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझो। अगर आत्मा समझ के बैठते हो, उस दिन सीखा बताया था आत्मा समझ के कैसे बैठना है, नहीं तो हर सेकंड मैं माना शरीर की स्मृति है, तो आत्मा समझकर अगर परमात्मा को याद करते हो तो उसकी शक्ति पाप को मिटाते हैं। जैसे देखो सूर्य बाहर आया हुआ है, सूर्य की किरणें हमें नहीं लगती है क्योंकि हम छत के अंदर बैठे हैं। अगर हमें सूर्य की किरणें चाहिए, ये हॉल छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। शिव बाबा इस धरती पर आया हुआ है, तब हम कहते भगवान आया हुआ है, कहां है, किसके लिए आया वो? आत्माओं के लिए, शरीर के लिए नहीं। अगर आत्मा अपने को जागृत करते हो मैं आत्मा हूं, तो शिव बाबा की शक्ति का अनुभव कर सकते हो। तो आज शाम को देखना अगर बाबा का कैसे अवतरण होता है, अव्यक्त बाप दादा कैसे आते हैं, यहां बैठे बैठे अनुभव करना चाहते हो कि माताएं भाई क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के 2 बजे 3 बजे आके पहले बैठते हो, लेकिन हमारे शरीर की आज ताकत नहीं 2-3 घंटा बैठने की, ये कलियुगी तमो प्रधान शरीर हो गया है, बैठ नहीं सकते, प्यास लगती है, पाव दर्द करता है, दौड़ दौड़ के नहीं, बाबा इधर ही है, आप हम बच्चों के लिए आ रहा है, आप किसी भी कोने में भी बैठो, आराम से बैठो, सबके लिए व्यवस्था है। और आराम से दिनभर से जाने के बाद खाना खा लो, रेस्ट करो, शाम को फ्रेश हो करके आराम से आके जहां जगह मिलती है, देखो सूर्य आया है, किसी भी कोने में जाओ आप, सूर्य की किरण हर जगह पहुंचती है। ऐसे इस भगवान सर्वशक्तिवान हो, वो सूर्य उसकी किरणें कोई भी कोने में भी बैठ जाओ आप, बाबा के वाइब्रेशंस आप तक पहुंचता है। तब देखना बाबा मुरली में कहता है, बाबा हर एक बच्चों को देखता है, आप भी देखना जब बाबा आता है इस कोने से इस कोने तक दृष्टि देता है, हर एक आत्मा को शक्ति का किरण देता है, ऐसा सर्वशक्तिवान सूर्य है। इसलिए आगे बैठने से आपको ज्यादा मिलेगा, समान सबके लिए, ठीक है। तो हर एक आत्मा को इस कोने से इस कोने तक, तो इसलिए आज शाम को एक काम करो, जब आके बैठते हो पहले आत्मिक अव्यक्त स्थिति में बैठो। कैसे बैठेंगे? आते ही मन खाली नहीं रहता है, बुद्धि खाली नहीं होती है, अगर बैठेंगे और कुछ याद आएगा और कुछ याद आएगा, तो यहां आके बैठते ही अपने आप को जागृत करो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, बाबा का बहुत बड़ा चित्र है, देखते बैठो, इधर कौन आया कौन गया किसी से कोई मतलब नहीं, भगवान से मिलन मनाने आए, शिव जयंती मनाने आए हो, तो यहाँ बैठते ही आप अपने आप को देखो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। मन और बुद्धि को बिजी करना चाहिए। अगर बुद्धि खाली है कोई न कोई इधर उधर के विचार आएंगे, मन खाली है मन में कोई न कोई विचार आएंगे, ये दो रास्ते हैं, इन दोनों को बिजी रखना चाहिए। ये मन और बुद्धि एक करते हो, इसका नाम है एकाग्रता, ध्यान आपका एक जगह पर है। तो ये पांच प्रश्न याद रखो, यहां बैठते ही अपने आप से बात करो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, बुद्धि जवाब देती है। सात गुण, एक एक गुणों को याद करो। मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं शरीर के द्वारा, कर्म करता हूं। पांचवा, मैं कहां से आया। ये पांच प्रश्नों का चिंतन करते बैठो, देखो शरीर का भान भूल जाता है, अशरीरी बन गए। जब बाबा आता है, देखना आज बाबा का कैसे आप अनुभव कर सकते हो, तब लगेगा जाते समय हमने कुछ पाया है, सिर्फ सुना नहीं। ये अनुभव करते शिव जयंती मनाकर भरपूर होके जाना चाहिए। ओम शांति।